السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. Please do it. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. آپ سب حضرات کو عید کی بہت مبارک ہو. ہم یہ سوچتے رہے کہ آج درس کریں یا نہ کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کی عید کی مصروفیات بھی ہیں. کچھ لوگ آج بھی جو ہمارے ریگولر سامعین ہیں، وہ جو آ کر مسجد میں سنتے ہیں، وہ آج بھی قربانی کے عمل میں مصروف رہے ہیں یا دعوتیں وغیرہ بھی چلتی ہیں. لیکن امریکہ کی ترتیب چونکہ مختلف ہوتی ہے، یہاں لوگ عید کے دن جاب پہ بھی جاتے ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ چونکہ ایک ترتیب چل رہی ہے اور اس کو مکمل بھی کرنا ہے، ابھی بھی آدھی کتاب رہتی ہے، تقریباً 54 55 چیپٹرز ہیں، ابھی 26 چیپٹر پر ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنے ناغے سے بچا جائے بچ جائیں ہم. باقی جو نہیں آ سکتے فزیکلی، آن لائن تو سن ہی لیتے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ آج بھی کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں. تو اس درس کو ہم جاری رکھیں گے. آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے باب ما جاء فی ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس چیز کے ساتھ روٹی کو کھاتے تھے، اس پر چیپٹر ہے. پچھلا چیپٹر تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو روٹی تھی اس کا را مٹیریل کیا تھا، وہ گندم کی تھی یا جو کی تھی. تو ہم نے پڑھا پچھلے ہفتے کہ وہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور وہ بھی چھنی ہوئی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کھانے پینے کے ابواب اب چل رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھانا کس انداز میں کھاتے تھے، بیٹھ کر کھاتے تھے یا اور اس طریقے سے تین انگلیوں سے کھاتے تھے، پھر کھانا کھا کر انگلیاں چاٹتے تھے تاکہ معمولی سا بھی جو رزق ہے وہ ضائع نہ ہو. تو ابھی وہی ترتیب چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روٹی کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے یا ان کا سالن کیا ہوتا تھا. تو پہلے اس تفصیل کو پڑھ لیتے ہیں، پھر حدیث پر جائیں گے کہ ادام سے کیا مراد ہے. ادام تو کوئی بھی سالڈ یا لیکوڈ چیز جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جائے. سالڈ اور لیکوڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو بعض جگہوں پر تو لوگ صرف جیسے شوربے کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے یا دیسی گھی کے ساتھ بھی لوگ روٹی کھاتے ہیں آج بھی گاؤں دیہات میں. مجھے یاد ہے ایک دم ہم گئے ہمارے عزت کی خانقاہ میں، تو وہاں پر کچھ خاص مہمان تھے، تو انہوں نے گھی اور شہد، دیسی گھی اور شہد اور روٹی وہ پیش کیا اور انتہائی لذیذ کھانا تھا. اس دن ہمیں احساس ہوا کہ شہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لذیذ اور طاقتور غذائیں کیا ہوتی ہیں. تو دیسی گھی اور شہد اور روٹی، تو لکوڈ وہ چیز آ گئی. اور سالڈ میں کوئی بھی آپ جیسے گوشت روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں یا اور کوئی چیز، تو وہ سالڈ میں آ گئی. بعض فقہا میں یہ اختلاف رہا ہے کہ ادام جو ہے اس میں گوشت شامل ہے کہ نہیں. جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ اس کو ادام میں شامل نہیں کرتے تھے، کیونکہ گوشت بہت سی دفعہ روٹی کے بغیر بھی کھایا جاتا ہے نا، ڈائریکٹ جو روسٹ ہوتا ہے روٹی کے بغیر کھایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی ایک تفصیل ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کوئی چیز فکس نہیں کی کہ یہی کھاؤں گا، یہ نہ ہوئی تو میں نہیں کھاؤں گا. ہمارے یہاں بعض لوگ اس ترتیب پر چلتے ہیں کہ جب تک میری خاص پسند کی چیز نہ ہو اور خاص کمبینیشن نہ ہو، سالن تو لیکن فلانی روٹی چاہیے، فلانا چاول چاہیے، تو یا برگر ہے تو فرائز نہیں ہے تو نہیں، یہ فلانی سوس نہیں ہے تو بالکل نہیں، تو یہ ترتیب نہیں تھی، یہ نخرا نہیں تھا. خاص طور پہ جس کو بھوک لگی ہو اور وہ پھر بھی نخرے کرے تو یہ اس میں تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بیچارے، ان کو بہت کچھ حالات آ گئے ان پر، ایک ایسا وقت بھی آیا زندگی میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ایک ساتھی نے ان کو کہا میں آپ کو کھجوریں لے دیتا ہوں. تو وہ گئے کہتے ہیں اچھا اجوا کھجور نہیں ہے ادھر، अजवा तो नहीं है, मैं तो अजवा ही खाता हूँ क्यों, वो सुन्नत है जी। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यार आप, ये तो नखरा है, ये तो नखरा है। उन्होंने कहा नहीं सुन्नत, आप सुन्नत, मैं सुन्नत खाना चाहता हूँ, आप कह रहे नखरा है। उन्होंने कहा आप बात को समझ नहीं रहे, आप इस टाइम हालत इस्तरार में, आपको खाने को कुछ नहीं है। अगला बंदा आपको जाके खजूरें लेकर दे रहा है, कह रहा मैं तो खाते ही अजवाऊँ। तो ये चीज़ है नखरा, चाहे इसको आप दीनी तड़का लगा दें। तो नखरा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो असल ये थी कि जो मिले खा लो, जो मिले खा लो, और बाज़ अवक़ात ना मिले तो रोज़ा रख लो। तो जो भी हलाल हो और साफ़ सुथरी चीज़ हो तो नबी अलैहिस्सलाम खाते थे, और कभी कोई ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं किया। बाज़ लोग होते हैं ना, किसी दिन किसी खाना खाने के लिए किसी दूसरे शहर में भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर लेते हैं। ठीक है, जायज़ है, कर सकते हैं, हलाल है। और बाज़ अवक़ात डिपेंड करता है, अगर आप उसमें ये नीयत रख रहे हैं कि मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक निभाने के लिए, फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, कुछ खा भी लेंगे, तो ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का मिजाज नहीं था कि खाने के लिए एक्स्ट्रा तकल्लुफ़ किया जाए। और अगर कोई चीज़ पसंद ना आती थी तो उसको उसकी शिकायत नहीं करते थे, बल्कि छोड़ देते थे, उस पर ऐब नहीं निकालते थे। तो इसलिए हम ये बात हज़रात को बहुत ज़्यादा, ये हमने इस्लाही मजलिस में भी इस पर बात की थी कि आजकल रिव्यू सिस्टम है, इंटरनेट पे भी चलता है, तो लोग फौरन किसी दिन ह्यूमन एरर की वजह से कोई खाना सही ना पक सके तो फौरन जाके हम नेगेटिव रिव्यू देते हैं, ऐप निकालते हैं। हाँ, एक बंदा मुस्तकिल काम कर रहा है तो बेहतर इसका हल ये है कि आप जाकर उस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करें कि ये आज खाने में चीज़ कमी थी, तो बेहतर है कि आप इसको दुरुस्त कर लें, मालिक जो भी उधर सुपरवाइज़र है। फौरन ऐलान करने की क्या ज़रूरत है, आप इसमें इखलास मुखलिस आप तब है उस बंदे के साथ कि वो आपको, कि आप चाहें कि वो इस चीज़ की सलाह कर ले। हाँ, अगर मुस्तकिल बार बार कोई गड़बड़ कर रहा है तो आप एक रिव्यू दे देते नेगेटिव, लेकिन चूंकि हमारी मनफी कमेंट करने की ज़्यादा अमूमन आदत बन चुकी है, और लोग बहुत बाजू का छोटी छोटी बात पर जो है वो नाराज़ होकर वो फौरन रिव्यू डालते हैं नेगेटिव, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। कि नबी अलैहिस्सलाम का मिजाज ये था कि जब किसी चीज़ का ऐब नज़र आता था तो किसी चीज़ में, तो वो नहीं खाते थे। अब इसमें कोई शख्स कह सकता है कि यार लोग, मैं तो इसलिए रिव्यू डाल रहा हूँ कि जो लोग हैं बाकियों को नुकसान से बचा सकूँ, कि ये खाना मैंने खाया, पैसे खर्च किए, अच्छा नहीं लगा, तो ये ना हो कि लोग आ जाएं और वो ख़र्च करें तो उनको नुकसान हो। तो यही मैंने अर्ज़ किया कि एक दफ़ा के तजर्बे पर ऐसा ना करें। आप असल तरीका है कि उनके मालिक से अर्ज़ करें, ये जो भी सुपरवाइज़र है, बाद में मुस्तकिल वो मसला हो रहा है तो फिर ज़रूर बताएं। हाँ, ऐसा मसला है कि वो हलाल के नाम पर हराम बेच रहा है तो ये मामला हो रहा है, या कोई बहुत ही आपको पता चला कि उनके किचन में बहुत ही गलाजत है, लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, एक अलग मसला है। लेकिन टेस्ट जो कि एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि मुझे पसंद आए आपको ना आए, बिल्कुल मुमकिन है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। और घरों में ख़ास तौर पर फ़ौरन ऐप निकाल लेना खानों में, ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं था, क्योंकि असल इसमें पीछे वजह क्या है कि शुक्र का जज्बा गालिब था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त भी खाना फराहम कर दिया, मैं इस पर क्यों ना शुक्र इतना करूं, बजाय इसके कि मेरी मर्ज़ी का नहीं था इस पर मैं ना शुक्री करता रहूं। तो असल में ये शुक्र का जज्बा गालिब था, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने कभी कंप्लेन नहीं की। पहली हदीस पढ़ लेते हैं, बिकाल हद المتصل منا الى امام الترمذي قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث نعم الإدام أو الأدم الخل. عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے، سرکہ کتنا اچھا اور کیسا اچھا سالن ہے. اب اس سے کیا مراد ہے، सिरके की क्या खसूसियात हैं؟ एक तो ये कि सिरका अगर बना हुआ है तो बस फौरन से दस्तियाब है, रोटी के साथ खा लिया, कोई एक्स्ट्रा उसको आपने शनवारी कढ़ाई की तरह एक घंटा उसको कुक नहीं करना, एक तो बस सिरका बनाने का प्रोसेस है वो काफ़ी ऐसा चलता रहता है। दूसरा ये कि रोटी लगा के खा लिया और आसानी से अवेलेबल दस्तियाब होता है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कुछ इसके तिब्बी फ़वाद हैं, खाने के हाजमे वगैरह में मदद करता है, पेट के कीड़े मारता है और भूख जो है वो भी ठीक करता है, جبکہ اگین اس کا تعلق علاقے کے ساتھ بھی ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طب نبوی میں حدیث میں جو بھی خوراک کی علاج کی باتیں آتی ہیں ان کا تعلق مدینہ کی آب و ہوا کے ساتھ تھا اور حجاز کی آب و ہوا کے ساتھ تھا, لیکن اس کو لازمی نہیں ہے کہ ہم جس موسم میں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ ریلیونٹ ہو. تو ڈاکٹر حکیم جس کے پاس بھی نیوٹریشنسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اس سے مشورہ کر کے یہ چیزیں استعمال کریں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ پچھلے انبیاء نے بھی اس کو سالن کے طور پر استعمال کیا ہے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی ایک حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ گھر جس میں سرکہ موجود ہو تو اس کا مطلب ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, یعنی وہ محتاج نہیں ہے. اب اس کو ذرا سمجھنا ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ. ایک اس کی بات اہم اس میں یہ کہ ایک موقع تھا فتح مکہ کا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. تو مکہ میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جو بھی ہجرت کر گئے تھے ان کے گھر تو باقی نہیں تھے, تو لہذا فتح مکہ پر کہاں رہتے, تو قریبی رشتہ دار وہ تھیں. اور پھر یہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسرال بھی تھا, تو وہ ادھر گئے. تو انہوں نے کہا ام ہانی سے کہ کھانا لے آئیں, تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکہ لے آیا, سرکہ ہی تھا کھانے میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم الادام الخل, کیا ہی اچھا کھانا ہے سرکہ. اس میں یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ بتائیں کہ اس دنیا کا سب سے اچھا کھانا سرکہ ہے, بلکہ اس میں میزبان کی رعایت تھی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو کچھ اچھا فراہم ہی نہیں کیا. مہمان آئے, مہمان بھی کون, نبی علیہ السلام. موقع کون سا, فتح مکہ, مکہ فتح ہو رہا ہے اور کھانے کو کیا ہے, سرکہ. تو اس میں بھی اتنی رعایت رکھی کہ یہ نہ وہ فیل کر لیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے ان کو کچھ سر کا کھانا سرکہ موجود ہے جس گھر میں, تو اس کو یہ وہ محتاج گھر نہیں ہے, اس کی خوراک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. شکر کا جذبہ دیکھیں, کیا تعلیم دے گئے کہ سرکہ بھی موجود ہے گھر میں اگر کھانے کے لیے, تو وہ گھر بھوکا نہیں ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم محتاج ہیں. اور دوسرا یہ کہ میزبان کی رعایت کتنی رکھی, کہاں کتنا اچھا کھانا ہے, اب میزبان بھی خوش ہو جاتا ہے. بات ظاہری بات ہے جھوٹ نہیں تھی, سرکے کے فوائد ہیں, لیکن جس انداز سے اس کو پیش کیا اس سے میزبان کو بھی حوصلہ ملا. ہم ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس سکھر کی کھجوریں لے گئے, پہلے بھی شاید عرض کی تھی بات, سکھر پاکستان میں سکھر میں کھجوریں اگتی ہیں اور ایک بلوچستان میں زیادہ اگتی ہیں. تو سکھر کی کھجور والد صاحب نے ہمارے کاروبار وہ کرتے تھے کھجوروں کا بھی, تو میں اپنے استاد کے پاس سکھر کی کھجوریں لے گئے, تازی فصل آئی ہوئی تھی کراچی میں. میں نے کہا سکھر کی کھجوریں ہیں, تو انہوں نے کہا سکھر کی کھجوروں کی تعریف کی, انہوں نے کہا مجھے بڑی پسند ہے, میں بھی خوش ہو گیا. بعد میں جب یہ حدیث بھی پڑھی تو سمجھ آئی کہ دنیا میں اتنی اور کھجوریں ہیں کمال کمال کی, یہ فلسطینی کھجور کتنی زبردست ہوتی ہے مجدول, پھر مدینہ کی کھجوریں اجوا ہے, امبر ہے اور مبروم ہے, مطلب ایک لمبی فہرست ہے. کبھی میں نے کسی کو کہتے نہیں سنا کہ سکھر کی کھجوریں ہی میری پسندیدہ کھجوریں ہیں, جبکہ اس کو تو پرزرو کرنے کے لیے بھی اس میں ایکسٹرا تیل بھی لگاتے ہیں. لیکن اس وقت دینے ہدیہ دینے والے کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اضافی بات کی, کامنٹ کیا, جس سے اس وقت میں بھی خوش ہوا کہ چلو میں ہدیہ لے کر گیا تھا شوق سے کھائیں گے, کہا اچھا سکھر کی کھجور تو بڑی پسند ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہدیہ دینے والا یا اکرام کرنے والا جس کے ہم جائیں تو اس کا کتنا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کے ہاں جاتے ہیں چاہے بے تکلفی بھی ہو, تو اپنی پسند کی چیز نہ ہو تو اس پر نگیٹو تبصرہ کرتے ہیں. یہ بعض اوقات ایک اور عجیب عادت ہے لوگوں کی, اس سے بھی بچنا چاہیے. کہ کسی کے ہاں گئے انہوں نے بریانی بنائی مثال کے طور پہ, وہ حیدرآبادی اور پاکستانی بریانی کا ویسے ہی یہاں ایک مقابلہ چلتا رہتا ہے ہندوستان پاکستان کی طرح, تو وہ اب کھائی آپ نے بریانی کھائی اور ساتھ آپ بریانی کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں فلانی جگہ کی بریانی بڑی کمال کی ہے, تو اس سے ممکن ہے کہ جو میزبان ہے وہ سوچے شاید اسے میری بریانی پسند نہیں آئی, تو آپ اس وقت اس کی بریانی کی تعریف کر لیں ورنہ خاموش رہیں. اس طرح آپ کہیں کھا رہے ہیں, ہاں یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کی بھی تعریف کی اور پھر آپ کسی اور جگہ کی بھی تعریف کریں تو ٹھیک ہے, लेकिन आप कहीं और जगह किसी और जगह की तारीफ़ करते रहें और उसकी ना करें तो बंदा सोचेगा शायद मैंने इतना अहतमाम किया और उसको पसंद ही नहीं आया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसकी भी शरीयत रायत रखती है कि हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम उसका ख्याल रखें। दूसरा ये कि ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने खाना खाते हुए फरमाई, तो क्या खाने के दौरान गुफ्तगु जायज़ है ना जायज़ है? ये अगलातुल आवाम में से है, बाज़ लोग समझते हैं कि खाने के दौरान बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। खाने के दौरान बेहतर है बल्कि कि बोला जाए, जो भी साथ लोग बैठे हैं उनसे गुफ्तगु की जाए, लेकिन वो हल्की गुफ्तगु होनी चाहिए, भारी गुफ्तगु ना हो, ऐसा टेक्निकल मसला ना छेड़ें कि जिससे खाने से तवज्जो लोगों की हट जाए। एक दोस्ताना अंदाज में हल्की फुल्की गपशप दिलगी के लिए करना, ये मुनासिब है, करना चाहिए। बाज़ लोग उलमा के साथ जब बैठते हैं, कभी मौका मिल जाता है कोई बड़ा आलिम आ गया, तो खाना खा लो साथ, कोई बहुत ही मुश्किल मसला पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं कि सीधा सफ़र में कभी आप जाएं उलमा के साथ, तो कोशिश करेंगे बहुत भारी सवाल, ऐसा सवाल जिसकी बहुत तफसीलात हों, दकीक मसला हो, उसकी तरफ ना जाएं, बल्कि मिजाज देखें, उनको भी थोड़ा रिलैक्स होने दें। हमारे उस्ताद थे मौलाना एहसानुल्लाह शेख साहब, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था उनसे, हमें उन्होंने मिशकात पढ़ी, दारुल्लूम कराची के फाजिल थे, मुफ्ती रफ़ी साहब, मुफ्ती तकी साहब वगैरह के शागिर्द थे, मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी के मुरीद थे, उम्र भी बड़ी है माशाल्लाह, किताबें भी बहुत लिखी, तो उनके साथ काफ़ी सफ़र करने का अल्लाह ने मौका दिया। तो एक दफ़ा इसी दम उनके साथ सफ़र कर रहे थे, तो मैंने कोई सवाल पूछा, हमारे साथी भी थे, उन्होंने कहा नहीं सफ़र में ऐसे सवाल नहीं पूछा करें, वो बाद में पूछ लेंगे, अभी हमें रिलैक्स करने दें, इन्जॉय करें, कोई शेर व शायरी करें, कोई लतीफ़े सुनाएं। दीन ने इसका भी लिहाज रखा है कि आप जो है जब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, तो इन्जॉय करें। हाँ, बीच में हल्की फुल्की दीन की बात भी सीखेंगे, लेकिन बहुत भारी दकीक मसला वो आप कोशिश करें कि उस मौके पर पूछें, जब अगले का भी दिमाग उस तक मुतवज्जो, अगला बंदा रिलैक्स करने के लिए सफ़र कर रहा है, आप उसको फिर किसी मुश्किल में मसले की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये आदाब के ख़िलाफ़ है। इतना है कि वो मसला ऐसा फंसा हो कि उसी वक्त हल उसका करना है, तो एक अलग बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम खाने की बुराई नहीं करते थे। इसमें एक शेर, ये मुफ्ती रशीद साहब भी बड़ा पढ़ा करते थे कि उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो, हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में खुदा हो। उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो, हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में खुदा हो। तो अगर दिल में खुदा है तो जो भी चीज़ मिलेगी इंसान शुक्र के जज्बे से सोचेगा कि मैं तो इस काबिल भी नहीं था, मुझे मिले अल्लाह ने, फिर भी कितना अच्छा अता कर दिया। वभी قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت ان نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول الستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملا بطنه। نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ سماك بن حرب نے اصل میں فرمایا کہ میں نے نعمان بن بشير کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا تم کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو, हालांकि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके यहाँ मामूली किस्म की खजूरों की मकदार ना होती थी कि जिससे शक्म शेर हो जाया जाए, यानी इतनी तादाद भी नहीं थी खजूरों की कि पेट भर कर इंसान खा सके, जबकि आज तुम्हारे पास कितनी नेमतें हैं। तो इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बाज़ूकात ख़िज़ा यही होती थी कि वो खजूर खाएँ। हमारे उस्ताद थे वहाँ जनूबी पंजाब के, पाकिस्तान में वैसे मदारिस के हालात पतले होते हैं फाइनेंशियल एतबार से, मुजाहदा भी बहुत होता है सातजा का, तो सर्दियां थी, दिसंबर के महीने चल रहे थे, और हमारे मदरसे में उस ज़माने में मुझे याद है कि फंड्स की भी काफ़ी कमी थी, तनख्वाहें भी दो दो तीन तीन चार चार महीने शायद लेट मिलती थी, तो वहाँ तो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम भी नहीं है कि 12 महीने के उस पर ले लेंगे, 0 APR पे, वो निज़ाम भी नहीं था, पता नहीं कैसे गुजारा करते थे वो हज़रात। तो एक दिन सर्दियाँ थी तो अमरूद आए हुए थे, तो मैं अमरूद रेडी से ख़रीद रहा था दोपहर के वक्त, तो हमारे उस्ताद थे अबू दाऊद के मौलाना सैफुल्ला साहब, कमाल के आलिम और कमाल का मिजाज था उनका, आजिज़ी का, हमारे बड़ा बड़ी दोस्ती थी उनसे, तो वो भी अमरूद ले रहे थे, तो कहते हैं हमारे यहाँ तो अमरूद लोग रोटी के साथ खाते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, आम देखा था लोग रोटी के साथ खाते हैं, बाज़ू का अमरूद रोटी के साथ खाते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, मैंने आज या कल मैंने अमरूद के साथ रोटी खाई है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसमें सोचा सुभान अल्लाह, अमरूद के साथ रोटी वही खाएगा जिसके पास घर में सालन नहीं है, उन्होंने कोई शौक से नहीं कहेगा चलो आज यार भूख लगी है ताज़ी रोटी बनाओ, अमरूद खाते हैं रोटी के साथ, ये मजबूरी की हालत में खाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ बाज़ का सिर्फ खजूर ही ग़िज़ा थी, और खजूर तो खैर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है, इंसान जब खजूरें खा ले चंद या दूध पी ले साथ उसके, तो एक ख़ुद एक अच्छा खासा नाश्ता है या अगर खाना है तो वो। और लेकिन फरमाया कि खजूरें भी ऐसी थी कि मामूली, अदकल का मतलब है जो बहुत आला क्वालिटी की नहीं थी, बहुत आला क्वालिटी की नहीं थी। हमारे एक दोस्त हैं वो बलूचिस्तान में, उनके खजूरों के बाग हैं, वो आमिल भी हैं, और बलूचिस्तान में एक फ़िरका है, फ़िरका नहीं पूरा एक मज़हब है, इसको कहते हैं ज़िक्री, वो जिक्र करते रहते हैं और मुसलमान नहीं है, उनका अपना काबा है वहाँ पे, अपने अजीब अकायदे हैं उनके, अपना हज करते हैं। तो इनके हमारे जो साथ क्लास फेलो थे मौलाना हसरत मजीद साहब, तो उनको उनके आबाओ अजदाद उस मजहबी ग्रोह के, वो जो भी दीन उन्होंने बनाया हुआ था, उसके उसके मजहबी पेशवा थे, और इनके पास जादू का जो इल्म है वो हारूत मारूत वाला जो जादू है जो बनी इसराइल का में आम था, जो कि जिक्र है जिसका सूरह बकरा में भी मौजूद है, तो वो जादू नस्ल दर नस्ल उनके पास आ रहा था, सनत के साथ समझ लें। तो इनके जो दादा थे हमारे साथी के, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल कर लिया और फिर वो इस इल्म को यूज़ इस्तेमाल करते थे जादू के तोड़ के लिए, और अब वो फी सबीला करते हैं काम, पैसे भी चार्ज नहीं करते और फी सबीला इस काम में लगे, उनके बहुत ज़्यादा खजूरों के बाग हैं। बल्कि हमारे एक उस्ताद ने एक दफ़ा उनको कहा कि अल्लाह के बंदे तू शुक्र कर, अगर तू यहाँ अल्लाह तुझे हिदायत ना देता तो तू अब जिक्री फ़िरकों वालों का शायद पैगम्बर होता मजहबी पेशवा थे। तो उनके बहुत बागात थे बलूचिस्तान में, तुर्बत का इलाका ईरान के साथ जुड़ता है, तो वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा बागात थे, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इतनी खजूरें हैं कि उनमें से अक्सर मिडिल ईस्ट में, मलेशिया वगैरह इन जगहों पर चली जाए, मिडिल ईस्ट मलेशिया और मुल्कों में फरमा बताया कि जाती हैं, जिससे शराब बनती है, क्योंकि खजूरों से शराब भी तो बनती है। तो एक दिन हम कराची में जा रहे थे तो रेडियो पर खजूरें लगी हुई थी, उन्होंने कहा ये खजूरें तो हमारे यहाँ के गधे खाते हैं, कहने इतनी हल्की क्वालिटी की हैं कि हमारे यहाँ के गधे ये खजूरें खाते हैं, जो आला नस्ल है वो तो लोग शराब बनाने के लिए ले जाते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट हो जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम यानी खजूरों में भी किस्में होती हैं, बहुत आला हल्की रद्दी खजूर, तो ये बहुत ही हल्की क्वालिटी की खजूरें बाज़ अवक़ात खाने के लिए नसीब होती थी। इससे पता ही चला कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद बड़ा वो खाने को एक ज़रूरत के दर्जे में रहता है, खाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने काम में लग जाता है। हदीस नंबर 3, ये भी तकरीबन पहले पहली हदीस ही मिलती जुलती है। अभी قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سرکہ بھی کیا اچھا سالن ہے۔ حدیث نمبر 4، وبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وقيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن جهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأتي بلحم دجاج فتناحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكلها، قال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج۔ زهدم کہتے ہیں، زهدم فتح کے زبر کے ساتھ، کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، بلحم دجاج، یہ ظاہری بات ہے شیور مرغی کی بدعت تب نہیں تھی، وہ خالص دیسی مرغی تھی۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی کھانے کے لیے جو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پیچھے ہو گیا، تو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان تھے انہوں نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا، اس لیے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم اٹھا لی، فحلفت اللہ آکولا، میں کبھی اس کو نہیں کھاؤں گا۔ کہ دیسی مرغی آپ نے دیکھا ہوگا، جس نے دیکھی ہے یا کہ بچوں نے نہ دیکھی ہو، شاید بڑوں نے دیکھی ہوں گی، کہ وہ ہر چیز میں جا کر نالیوں میں بھی وہ اپنی غذا ڈھونڈ لیتی ہے، تو کہا ایسی گندی چیزیں کھاتی ہے تو میں تو نہیں کھاؤں گا اس کو۔ تو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ اور بے تکلف کھاؤ، ادنو قریب ہو جاؤ اور کھاؤ، میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرغی کا گوشت نوش فرماتے دیکھا ہے، اگر ناجائز ہوتا یا نہ پسند ہوتا تو آپ علیہ السلام کیسے تناول فرماتے، یعنی یہ اس کا مفہوم ہے۔ کہا میں نے خود آپ علیہ السلام کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز شریعت میں جائز ہے اس کی ممانعت تو نہیں ہو سکتی، तो लिहाजा ऐसे मौके पर अगर कोई कसम खा ले तो उसे क्या करना चाहिए कि वो कसम तोड़े और कफारा अदा करे और अपने ऊपर बिला वजह किसी चीज़ की पाबंदी ना लगाए, कसम खा गई। अच्छा, ऐसा जानवर जिसकी मुस्तकिल आदत हो कि गलाजत या गंदगी में से चीज़ें खाता है उसको कहते हैं जलाला। तो फिक्र में इसकी बाकायदा तफसीलात मौजूद हैं कि अगर ऐसा हलाल जानवर जो गंदगी खाने लग जाए, उसकी आदत पड़ जाए उसको, तो उसको अब कैसे उसको उसको खाया जाए, तो 10 दिन उसको पहले अच्छा साफ़ सुथरा पाक खाना खिलाया जाए और उसके बाद उसको ज़िबा करके खा लें, तो उसमें कोई कराहियत नहीं है। ये बड़े जानवर के लिए। मुर्गी की तरह का जो छोटा जानवर हो तो उसके लिए 3 दिन की शर्त है कि 3 दिन उसको दूसरा खाना खिलाएं और उसके बाद उसको ज़िबा करके खा लें, उसमें कोई कराहियत नहीं है। तो ये इसका हुक्म है। तो बहरहाल जो उन साहबी की एक वो जो साथी थे जो मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला के साथ थे, उन्होंने इस वजह से खाने से इनकार किया। तो इससे एक बात ये पता चली कि मेज़बान ने फिर उनसे कहा कि नहीं आप खाएं, और उनकी जो भी वजह थी जिसकी वजह से नहीं खा रहे थे पहले तो दरियाफ्त किया उसको। तो ये भी मेज़बानी के आदाब में से है कि अगर मेहमान कोई ना खा रहा हो कोई खाना तो उससे पूछ लिया जाए। मूसा व इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी जब मेहमान आए, कुरान में ज़िक्र है, और वो नहीं खा रहे थे खाना, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं खा रहे, वो तो फरिश्ते थे इसलिए नहीं खा रहे थे। तो इसलिए कोई ना बंदा खा रहा हो, ख़ास तौर पर अगर मजमा एक दो बंदे हो तो मसला नहीं, मजमा ज़्यादा है और आपकी नज़र पड़े तो मेज़बान का तो काम ही भी कि मजमे पर नज़र रखे। तो कोई नहीं खा रहा तो उसे दरियाफ्त करें, खैरियत है कि आप क्यों नहीं खा रहे, हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो यार पता नहीं हैंड स्लॉटेड इन्होंने दिया है कि नहीं दिया। तो अगर किसी की ये यहाँ पर अमेरिका का तो ही मसला है ना, तो अगर किसी के ये जहन में है तो उनको बता दें यार कि नहीं हैंड स्लॉटेड, अगर आपने लाया हैंड स्लॉटेड। तो ये बात पहले भी अर्ज की थी कि मेज़बानी नाम है मेहमान की राहत का, ना कि मेज़बान की चाहत का। तो इसीलिए इसमें ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का। एक दो हदीस और, दो तीन हदीस और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। वबी قال حدثنا الفضل بن سهل العرج البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن عمر بن سفينة عن ابيه عن جده قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا। सफीना कहते हैं رضی اللہ تعالی عنہ, देखें इब्राहिम बिन उमर बिन सफीना रिवायत कर रहे हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, यानी इब्राहिम ने उमर से सुना, और उमर ने अपने वालिद से यानी सफीना से सुना। क्या सुना? कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मैंने हबारा का गोश्त खाया था। हबारा क्या है? ये जानवर है, ये इसको हबारा कहते हैं, भी हलाल जानवर में से। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने इसको खाया था, इसका गोश्त, यानी आम दस्तियाब नहीं होता लेकिन इसको उन्होंने खाया था। ये सफीना कौन थे? ये नबी अलैहिस्सलाम के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, और इनको सफीना इसलिए कहा जाता था कि बहुत ताकतवर थे और बहुत ज़्यादा सामान उठा के ले जाते थे। तो सफीना चूँकि किश्ती को भी कहते हैं, और किश्ती जो है वो काफ़ी सामान उठा लेती है, तो इस वजह से इनको सफीना कहा जाने लगा। और ये असल में उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम थे। जब इनकी निकाह हो गया नबी अलैहिस्सलाम के बाद से, तो उन्होंने इस शर्त पर उनके साथ उनको आप अलैहिस्सलाम की खिदमत आज़ाद किया कि ये नबी अलैहिस्सलाम को की खिदमत करते रहेंगे। तो ये खिदमत करते थे, तो उन्होंने कहा मैंने आप अलैहिस्सलाम के साथ ये गोश्त खाया। एक और बात क्या पता चली कि हजूर अलैहिस्सलाम के ज़ात करदा ग़ुलाम हैं लेकिन खाना साथ खा रहे हैं। बाज़ लोगों के यहाँ ये रिवाज होता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान वगैरह में हमने देखा है कि एक सेठ होता है, एक उनका मुलाजिम होता है या ड्राइवर होता है। अब वो खाना खा रहे हैं और अपने लिए और खाना है, मुलाजिम के लिए और खाना है। तो असल तो आजदी ये है कि इंसान उनके साथ खाए, अल्ला ये कि ऐसी कोई मीटिंग करनी है, ऐसा मशवरा या ऐसे लोग साथ हैं कि वो आप नहीं चाहते कि और कोई बंदा ये गुफ्तगू सुने, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरीके से कि सफ़र पे हैं और कोई ऐसा मसला भी नहीं है, दो ही लोग हैं तो वो अलग और मैं अलग और आप अलग, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें एहतियात करनी चाहिए। ये आप लोग यहाँ KCB जो ब्रांड है इसके केक रस खाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, कश्मीर क्राउन बेकरी। ये जिन जो इनके मालिक थे फोत हो गए, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक था, और सलीम नाम था उनका, हमारे दादा के बहुत ज़बरदस्त पक्के दोस्त थे। बाज़ लोग तो उनको कहते थे कि समझते थे कि ये दोनों भाई हैं, मुशाबत भी शक्ल में बहुत मिलती थी, सफ़र भी बहुत इकट्ठे किए, अमेरिका भी इकट्ठे आए वो। तो बचपन में अंडे बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर रावलपिंडी के, उबले हुए अंडे, गुर्बत थी बहुत। अल्लाह ने तरक्की दी और फिर उन्होंने इंग्लैंड गए, जब मंगला वगैरह बना, मंगला डैम आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे बेकरी का काम शुरू किया, अल्लाह ने तरक्की दी। तो आज आप देखें अमेरिका में भी हम उसके केक रस खाते हैं। सन 2000 में उन्होंने 1 करोड़ रुपये की लागत से एक अस्पताल बनाया दिल का मीरपुर में, और वो सरकार के हवाले कर दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। मैं मुझे याद है स्कूल में था, हम उसकी इनाग्रेशन पे गए थे। 1 करोड़ सन 2000 में, और वो उसको हुकूमत को दे दिया। और उसका अभी भी वहाँ का जो मीरपुर का जो मेडिकल हॉस्पिटल वो है, कॉलेज है, उसके साथ जो प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल चाहिए तो वही वाला है। तो बहुत इन्फाक करते थे, तो उनके यहाँ हमने देखा, हमारे यहाँ चूँकि उनकी आमदोरफ्त रहती थी, जब भी आते थे अपने ड्राइवर को बुला कर, जो हम खाना पेश करते थे, कहते सब्र करें, हमारे ड्राइवर को भी बुलाएं, और साथ बिठा के खाना खिलाते थे। अल्लाह ने बहुत माल दिया, लेकिन आज ही नहीं गई कि इस तरीके से ड्राइवर का साथ ख्याल रखा अपने अपने हम सफ़र का, सफ़र भी कर रहे हैं, और ये नहीं कि बस पहुंचा दिया, अपने साथ बिठा के खिलाया। अलबत्त अगर किसी ने कोई ऐसी मीटिंग करनी है कि बाकी लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं है, कि कोई और बंदा आए शामिल अपनी गुफ्तगू करनी है, तो जहरी बात है उसके लिए सिर्फ ड्राइवर का मसला नहीं, कोई भी और बंदा हो जिसको लोग एक मीटिंग में नहीं चाहते कि हमारी एक इंक्लूसिव मीटिंग है, कोई और उसमें एक्सक्लूसिव मीटिंग है, इसमें किसी और को हम शामिल करें, तो ठीक है, इसका इसकी रियायत रखनी चाहिए, लेकिन किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। मकसद इस सारी बात का ही है। बल्कि एक दफ़ा उनसे हमारे वाले साहब ने कहा कि वो अपनी कोई फैक्ट्रियों का अहवाल बता रहे थे, तो वाले साहब ने पूछा कि फ़लानी एक फैक्ट्री या एक बेकरी आपकी अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप उसको बंद क्यों नहीं कर देते, और ब्रांचों में तो नफा है। तो कहने लगे कि उस एक फैक्ट्री से दर्जनों लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, तो मुझे तो नुकसान नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं तो नफा ही कमा रहा हूँ, लेकिन वो कई 100 लोग जो उस फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनका रिस्क बंद हो जाएगा, इसलिए मैं वो चलाता रहता हूँ। तो ये सोच थी उनकी, माशाल्लाह। उन्होंने किताब लिखी बाग शीरी से ब्रेड फोर्ट तक, बाग शीरी से वो गाँव था, ब्रेड फोर्ट में उन्होंने फिर अपना वो काम किया। तो वो उस किताब में पूरा अपना सफ़र लिखा हुआ, कैसे मैंने ये तरक्की की, और अल्लाह ताला ने खूब उनको नवाजा। حديث نمبر 6 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فانه من شجره مباركه ابو اسيد رضي الله تعالى فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی، اس لیے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ تو اس زیتون کے تیل کی خاص طور پر فضیلت بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ مالش کے لیے بھی۔ اور آج ماڈرن تحقیق بھی بتاتی ہے کہ بہترین تیل جو ہم استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن اس کو استعمال کا طریقہ الگ ہے، وہ پھر آپ ماہرین سے پوچھیں گے، اس کو پکانا نہیں ہے بلکہ اس کو اوپر سے ڈالنا ہے، اس کے فائدہ ورنہ اس کا کم ہو جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وبه قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر۔ تو یہ روایت ہے جس کی سند لمبی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیتون کا پھل کھاؤ اور مالش کرو اس سے، اس لیے کہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کے اتنے فوائد کیوں ہیں؟ ایک تو یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ جب سیلاب آیا نوح علیہ السلام کے دور میں، تو اس کے بعد جو پہلا درخت اگا، جتنی دنیا باقی ہے، جتنے انسان باقی ہیں، نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد کے لوگ اور ان کی نسلیں ہیں، جتنے جانور، جتنے پودے اس کے بعد کے، تو اس میں جو پہلا درخت اگا وہ زیتون کا درخت تھا۔ دوسرا یہ کہ شام میں، یہ خاص طور پہ شام جو ہے، والتینی والزیتون وطور سینین، تو اس میں خاص طور پہ شام کا ذکر ہے، اہل شام کا، تو ارض شام کا، تو شام جو کہ مبارک جگہ ہے، الذی بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا، تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ بارکنا حولہ سے مراد ہے کہ اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دیں، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ روحانی برکتیں کہ انبیاء کی جگہ تھی، انبیاء وہاں رہے اور انبیاء وہاں مدفون ہیں، اور دنیاوی ایسے کہ بہترین پھل وہاں اگتے ہیں۔ عرض شام میں آج کل فلسطین بھی شامل ہے، جارڈن بھی شامل ہے، اور جو ملک آج سیریا اور شام کے نام سے وہ بھی شامل، تو اس زمانے میں بڑا تھا یہ۔ तो आज भी आप देखें, जो मैंने भी जिक्र किया उस खजूर का जो आती है फ़लस्तीन से, क्या नाम है उसका, मजदूल, कितनी लजीज खजूर है और कितनी ज़बरदस्त उसका जायका होता है। तो उसके जैतून भी उस इलाके का बहुत मशहूर, तो इस वजह से। दूसरा ये कि प्रॉफिट नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर इस फल की बरकत के लिए दुआ भी मांगी, तफसीर कुर्तुबी में मौजूद है। और उसके बेशुमार अलग तिब्बी फ़वाद हैं। और एक और फ़ायदा इसका ये कि इसका बरकत में भी शामिल है कि इसकी उम्र ज़्यादा है, जैसे खजूर के दरख्त की उम्र ज़्यादा होती है। और आपको ये भी बताते चले, खजूर भी ऑर्गेनिक फ्रूट्स में से है, खजूर का दरख्त, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो उसकी लाइफ भी लंबी होती है, और उसके अलावा ये कि खजूर का दरख्त काफ़ी अरसे में प्रोड्यूस होता है, फ़ौरन से एकदम में फल नहीं देने लग जाता। तो अमूमन दुनिया में जितने खजूर के दरख्त हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं, उनको खादों शादों की एक्स्ट्रा और वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, अमूमन खजूर के दरख्त के साथ ऐसा नहीं होता। तो खजूर के दरख्त की भी उम्र ज़्यादा होती है और इस जैतून के दरख्त की भी, तो इसीलिए ये इसकी बरकतों की वजूहात लिखी हुई हैं। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए मालिश के लिए भी, और सर वगैरह पे लगाने के लिए भी, और इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमें अता हो, और इसी तरीके से खुराक में भी जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी उसको हम अपना लें। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी साथी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। दूसरी भी आती हैं, वो आपको बड़ा फ़र्क महसूस हो जाएगा। आजकल मजदूर यानी सीज़न में अब आजकल वहाँ से भी आने शुरू हो गई हैं दोबारा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज़ में और इधर मिडिल ईस्ट में भी खजूर का सीज़न जो होता है वो ये भी कुछ अभी मौसम चलेगा, ये वाला जो अभी चल रहा है आगे गर्मी के जो मौसम है, तो अब अभी आने लग गई हैं दोबारा। तो बीच में जो है वो ख़त्म हो गई थी उसकी सप्लाई, फिर जंग की वजह से भी शायद हालात ख़राब हो, लेकिन जो कैलिफोर्निया की मजदूर है और जो फ़लस्तीन की है उसमें आपको रेट में भी फ़र्क तो नज़र आएगा लेकिन क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। जी बस उसमें ये देख लें कि अगर इसराइलों ने नहीं भेजा लेकिन उसमें जो खेत है वो खेत किसके थे, क्योंकि वो अगर एक्सपोर्ट होगी तो फ़लस्तीन से तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट नहीं होगी, एक्सपोर्ट तो इसराइली के थ्रू होगी, लेकिन उसमें काश्तकार कौन थे ये देखना है ना, क्योंकि अब तो वो अगर जो भी उनका एक्सपोर्ट चल रहा है मामला, तो वो उसमें मुल्क तो इसराइल का नाम है, काबिज़ हैं वो, लेकिन बहरहाल एम्बेसी सारी चीज़ें उनकी तो इसराइल की चलती हैं। तो अगर वो प्रोड्यूस करने वाले अमूमन वहाँ पर जो काश्तकार हैं गालिबा वो हमारे अपने वो लोग हैं, जॉर्डन में भी एक तो अच्छा इसमें जॉर्डन की भी आती हैं और उस जगह भी आती हैं, लेकिन अगर आपको पक्का पता है कि हर कोई उसमें यहूदी ही इस्तेमाल कर रहा है, हर बंदा उसमें यहूदी ही बेनिफिट उठा रहा है, तो उसमें गैरत का तकाजा है कि बज मुमकिन है। बहरहाल उसमें वही बात की गैरत का तकाजा ये है, अलबत्ता जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इस हवाले से हमने जब वो हदीस पढ़ी थी कि नबी अलैहिस्सलाम जब रोम से जंग के लिए जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने रूमी जुब्बा पहना हुआ था, रूम से जंग के लिए जा रहे थे और रूमी जुब्बा पहना हुआ था, तो रूमी जुब्बा से मुराद है कि वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता था वो, बल्कि दूसरी जगह से आ रहा था। तो चूंकि हम हालत जंग में अभी, तो गैरत का तकाजा ये कि बचा जाए, लेकिन अगर कोई इसको खाता है तो उसको ये ना कहा जाए भाई तुम क्यों खा रहे हो, कोई अपनी पर्सनल उससे रुकता है, क्योंकि ख़ास तौर पर अमरीका में रहते हुए तो मसला है कि हम फ़ारेनहाइट से भी कोई चीज़ लेंगे तो टैक्स तो अमेरिका को जाएगा, जो कि सबसे बड़ा जंग का फाइनेंसर है, हम हलाल भी खाएं तो टैक्स हम उधर दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो मसाइल बाकी मुल्कों से ज़रा मुख्तलिफ है, हम हलाल भी खाते हैं तो टैक्स तो सरकार को जाता है, तो कितना रोकेंगे। बहरहाल बाकी गैरत का काजा ही है कि इंसान जितना बच सके उसको बचना चाहिए। हाँ जी, अल्लाह ताला को हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि ग़फिर वरहम वअन्ता रहीमुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता इन्ना कुन्ना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका वशुक्रिका वहुस्नि इबादतिक। या अल्लाह, जो पढ़ा गया, जो सुना गया, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, उसमें जो गलती हो गई उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें नबी अलैहिस्सलाम के साथ पक्का ताल्लुक नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम हैं, अल्लाह उनकी दाद रसी फरमा। या अल्लाह, उनकी मुश्किलात हल फरमा। या अल्लाह, जो जो मुसलमान अकवाम, जो जो मुसलमान मुल्क, जो जो मुसलमान इलाके, या अल्लाह, जिस भी मुसीबत में, अल्लाह उनको मुसीबत से निकाल। उसमें जहाँ जहाँ हमारी कोताहियाँ हैं, या अल्लाह, हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें दीन का दाई बना। या अल्लाह, इस ईद को, या अल्लाह, बाबरकत बना। या अल्लाह, इसको इत्तेहाद का सबब बना। या अल्लाह, इसको इत्तेहाद का सबब बना। या अल्लाह, इत्तेहाद का सबब बना। या अल्लाह, जोड़ पैदा करने वाला बना। तोड़ के असबाब से भी हमें बचा। या अल्लाह, या अल्लाह, ज़िंदगी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर गुजरे और मौत आए तो ज़बान पर कलमा जारी हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।